हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 309 आदित्य का सीक्रेट प्लेस। कुछ देर बाद सुरक्षा प्रमुख और आदित्य का सहायक वहाँ से चले गए। सुनैना उनके जाने का इंतजार कर रही थी। उनके जाते ही सुनैना झट से उठी और आदित्य के पास गई। वो उसके सामने खड़ी होकर बोली, अब बताओगे मुझे क्या है पूरी बात, ये सब क्या चल रहा है? हाँ सब बताऊंगा, लेकिन पहले। आदित्य अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसकी नज़र सुनैना के हाथ पर पड़ी। सुनैना के हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन था। आदित्य ने उसका मोबाइल फ़ोन लिया, स्विच ऑफ किया और सीक्रेट कमरे के बाहर फेंक दिया। फिर उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया। मोबाइल फ़ोन के अलावा सुनैना के पास कोई सामान नहीं था। उसने अपना पर्स घर के हॉल में ही रखा था। आदित्य को ऐसा करते देख सुनैना उसके पीछे आते हुए बोली, अरे आदि, लेकिन मेरा मोबाइल फ़ोन, तुमने उसे बाहर क्यों फेंका? किसी का फ़ोन कॉल आएगा तो? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे के अंदर खींच लाया। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उस पर अभी हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें याद है ना, पिछली बार विराज ने तुम्हारे पास ट्रांसमीटर फिट कर दिया था। हो सकता है उसने फिर से ऐसा कुछ किया हो। विराज का नाम सुनते ही सुनैना ने थोड़े गुस्से से कहा, लेकिन मैं उससे नहीं मिली और अब कभी नहीं मिलूंगी। मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आदित्य ने उसे पूरी बात बताई। उस जैसे घटिया इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए सोना। तुम्हें पता है सब उसने ही किया है। वो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा था और उसने ऑलमोस्ट मुझे मरवा ही दिया था। अच्छा हुआ कि अरविंद को पहले ही पता चल गया और उसने मुझे अलर्ट कर दिया। आदित्य की बातें सुनकर सुनैना हैरान रह गई। क्या मतलब, इन सबके पीछे विराज का हाथ है? मुझे लगा था तुम्हारा कोई बिजनेस राइवल होगा या अनय की पत्नी। मुझे लगा था विराज इतना पावरफुल नहीं है, आदित्य ने समझाते हुए कहा। वो भी अमीर परिवार से है सोना, ये मत भूलो। अगर वो ट्रांसमीटर फिट कर सकता है और हम पर नज़र रख सकता है तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात मनस्वी राठौर की, तो जहाँ तक मुझे पता है वो मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं कर सकती। सुनैना ने सवाल किया, अच्छा क्यों नहीं कर सकती? वैसे उसके बारे में क्या पता किया है तुमने? आदित्य ने जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जितना पता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये सब मनस्वी का प्लान होता तो अनय को कुछ तो पता चलता और वो मुझे पहले ही बता देता। मुझे लगता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, विराज सब कुछ अकेले कर रहा है। सुनैना ने सोचते हुए पूछा, लेकिन तुम्हारा असिस्टेंट और सुरक्षा प्रमुख, इन सबके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? और अगर मैं आज यहाँ नहीं आती तो शायद मुझे इस बारे में पता भी नहीं चलता। आदित्य ने उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सोना, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से अलग रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज तुम्हें ये सब पता चला, मैंने ही नदीम से तुम्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। सुनैना इमोशनल हो गई, लेकिन मैं परेशान हो गई थी न्यूज़ देखकर। तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीती है। और स्वीटी, उसे भी तुम्हारे बारे में बताना था कि तुम ठीक हो, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो भी बहुत परेशान थी। आदित्य ने सुनैना को गले लगा लिया और उसके बालों पर किस करते हुए बोला, रहने दो, उसे थोड़ी देर परेशान रहने दो, हम अभी उसे सच नहीं बता सकते। मुझे चाचा और चाची पर भी थोड़ा शक है, तुम जानती हो उन पर भरोसा नहीं कर सकते। सुनैना ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन स्वीटी उनके जैसी नहीं है आदि, तुम भी ये बात जानते हो। आदित्य ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ मुझे पता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से अरविंद ने मुझे तुम्हारे अलावा किसी को भी इस बारे में बताने से मना किया है। सिर्फ तुम पर ही मैं भरोसा करता हूँ, यहाँ तक कि रवि और ऑफिस में भी किसी को इस बारे में पता नहीं है, सुनैना ने कहा। लेकिन वो सब तुम्हें एक्सीडेंट के बाद से ढूंढ रहे हैं, सब अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश करेंगे, उनके सामने तो सच आ ही जाएगा, अभी नहीं तो थोड़े समय बाद, आदित्य ने जवाब दिया। हाँ, मेरी टीम ने उनके लिए पहले से ही कुछ तैयार कर लिया है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद के लिए कुछ करना होगा। सुनैना थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछी, मैं इन सब में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बताओ, मैं सब कुछ करूँगी आदि, तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आदित्य ने उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तुम मदद कर सकती हो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वीटी और नैना घर से निकलने को तैयार थीं। स्वीटी बार बार सुनैना का नंबर डायल कर रही थी। वो ये पूछना चाहती थी कि सुनैना कहाँ है और आदित्य का हालचाल कैसा है, लेकिन सुनैना का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। आदित्य का नंबर कल रात से ही नहीं मिल रहा था और अब सुनैना का नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा था। स्वीटी बहुत परेशान हो गई थी, नैना भी परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अकेले कहाँ जाए और कहाँ नहीं। वो दोनों हॉल में बैठी हुई परेशान थीं। तभी घर की डोरबेल बजी। स्वीटी को लगा कि आदित्य या सुनैना वापस आ गए हैं, इसलिए उसने गीता से नहीं कहा और खुद ही दरवाज़ा खोलने गई। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि आदित्य या सुनैना नहीं बल्कि एक और जाना पहचाना चेहरा वहां खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि फेमस एक्टर अक्षत कपूर था। स्वीटी को नैना और अक्षत के बारे में सब कुछ पता था। वो समझ गई कि वो नैना के लिए ही आया है। स्वीटी ने अक्षत को देखा और फिर पीछे मुड़कर नैना को देखा। वो दोनों के बीच से हट गई। अक्षत और नैना की नज़रें मिल गईं। अक्षत को देखकर नैना ने नज़रें फेर लीं और पीछे मुड़ने लगी। तभी अक्षत ने उसे आवाज़ लगाई, नैना प्लीज एक मिनट रुको, कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एक मौका तो भगवान भी देता है, तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी। अक्षत को देखकर नैना का दिल पिघल रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाते हुए सवाल किया, किस चीज़ के लिए एक और मौका चाहिए तुम्हें अक्षत? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पीछे कितनी लड़कियाँ दीवानी हैं, लेकिन मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी। लेकिन कल रात जो कुछ हुआ अक्षत, और मैं दूसरी बातों को लेकर भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी। अक्षत उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, कौन सी दूसरी बातें जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे रिश्ते ए भी ज्यादा? नैना ने बेरुखी से कहा, हमारा रिश्ता बचा भी है क्या? अक्षत थोड़े गुस्से से पूछा, तुम कौन होती हो बिना पूरा सच जाने हमारा रिश्ता खत्म करने वाली? मैंने जो पूछा है वो बताओ। अक्षत को नैना से कोई जवाब नहीं मिला। उसने स्वीटी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें पता है ये किस बारे में बात कर रही है? तुम ही मुझे बता दो। अक्षत स्वीटी की तरफ देख रहा था। स्वीटी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अक्षत का जवाब देना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसे लगा कि नैना ने इतना तो बता ही दिया है कि वे दोनों किसी बात को लेकर परेशान है, तो अक्षत को भी पूरी बात पता होनी चाहिए। शायद वो आदित्य और सुनैना तक पहुँचने में उनकी मदद कर पाए। ये सोचकर स्वीटी ने कहा, अक्षत सर, वो कल रात से भैया घर वापस नहीं आए और आज सुबह से भाभी भी घर से बाहर चली गई हैं। अक्षत निराश होकर बोला, कम ऑन नैना, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कॉल करके नहीं बताया। बाकी बातें और गलतफहमियां एक तरफ, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम, क्या तुम मुझे इतना लायक भी नहीं समझती कि अपनी कोई भी परेशानी शेयर करो? और वैसे भी सुनैना और आदित्य से मेरा भी कुछ रिश्ता है। नैना ने वही बेरुखी दिखाते हुए कहा, उनसे तुम्हारा जो भी रिश्ता था वो मेरी वजह से है, और जब हमारे रिश्ते का ही कोई ठिकाना नहीं है तो फिर और वैसे भी तुम क्या कर सकते हो इसमें?
अक्षत नैना की बातें सुनकर बहुत इरिटेट हो गया, लेकिन उसे पता था कि ये समय नहीं है। फिर भी उसने मन के कुछ सवाल पूछे, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं इस तरह रिश्ते नहीं छोड़ता। अगर निभाना नहीं था तो फिर तुमने क्यों बनाया? इतनी छोटी सी बात पर क्या सच में तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? एक बार मेरी बात भी नहीं सुनोगी? क्या तुम्हें उस रागिनी पर इतना भरोसा है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। उन दोनों के बीच बात बढ़ती देख स्वीटी उनके बीच में आ गई। ओह, बीच में बोलने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे लगता है ये बात आपको बाद में सॉल्व करनी चाहिए। अभी भैया और भाभी को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे सच में उनकी बहुत फिक्र हो रही है उस एक्सीडेंट वाली न्यूज़ के बाद से। एक्सीडेंट वाली बात सुनकर अक्षत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कौन सी एक्सीडेंट वाली न्यूज़? क्या हुआ है? प्लीज़ तुम दोनों मुझे पूरी बात बताओ। अक्षत के पूछने पर नैना और स्वीटी ने मिलकर उसे पूरी बात बता दी। अक्षत पूरी बात जानने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे इस न्यूज़ के बारे में सब कुछ पता करने को कहा। फिर वो नैना और स्वीटी को साथ लेकर वहाँ से निकल गया। उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट वाली बात सुनकर वो समझ गया कि कोई आदित्य और उसके परिवार के पीछे है, इसलिए वो स्वीटी और नैना को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे लगा कि उन दोनों लड़कियों की जान को भी खतरा हो सकता है। क्रमशः